समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दिशा दिशा में गूंज रहा भारत माता का जयगान, भारत का संदेश विश्व को मानव मानव एक समान। सब स्वतंत्र हैं, सब समान हैं, सब में भाईचारा है, सब वसुधा अपना कुटुंब है, विश्व नीड ये प्यारा है। पंछी भरे उड़ान प्रेम से दिग दिगंत नभ को नापे, कहीं शिकारी बचे ना कोई ये संकल्प हमारा है। युद्ध और हिंसा मिट जाए ऐसा चले शांति अभियान, भारत का संदेश विश्व को मानव मानव एक समान। उगते सूर्य के तेज के साथ इन ओजपूर्ण पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूँ प्रियंका अरोड़ा आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा।
हेलो प्रियंका, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु वी वेलकम ऑन द बुध पूर्णिमा एडिशन ऑफ आज सवेरे। एंड प्रियंका हैज एक्चुअली ओपन द शो विद वेरी ब्यूटीफुल लाइन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड लव एंड हार्मनी,
जैसा बुध गौतम बुध ने दिया था।
जी बिल्कुल, सो ऑफ कोर्स वेरी एप्ट टुडे। एंड यस, वी हैव द यूजुअल फीचर्स ऑफ द शो, दैट इज वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट हेडलाइंस, और इत्तेफाक से जो आजकल की सुर्खियों में सब लोग जान रहे हैं, पूरा मुल्क है, तो उसमें भी आपको कुछ अमन और शांति के कह सकते हैं किरण दिख रही है। सो आई थिंक द वीक इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन अ पीसफुल नोट एंड वी रियली होप फॉर दैट।
बिल्कुल, भारत की ओर से हमेशा यही प्रयास रहा है। और आगे क्या चलने वाली हलचल उसके बारे में आपको बता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी DGMO के बीच आज फिर दोपहर 12 बजे बातचीत होगी, ताकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। इससे पहले सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, जो कंधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की संकल्पना आतंकियों, उन्हें संरक्षण देने वालों और आतंकी ढांचों को नष्ट करने के उद्देश्य से की गई।
Places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure and the terrain obtained around these.
Lieutenant General Rajiv Ghai said that Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi has granted full authority to the Army commanders for counter-action in case of any violation by Pakistan. On being asked about how many Pakistani planes were downed, Director General of Air Operations Air Marshal A.K. Bharti said their planes were prevented from entering inside the border and a few planes were definitely downed.
Definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. I have the numbers and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time. But definitely there are losses from their side which we have inflicted.
हवाई संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि लक्ष्यों का चयन सावधानी पूर्वक किया गया था और वायुसेना को बहावलपुर और मुरीद के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने का लक्ष्य दिया गया था। उन्होंने बताया कि केवल आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया।
Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate.
DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai said that Pakistan Army has reported to have lost nearly 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between 7th and 10th of May. Director General Naval Operations Vice Admiral A.N. Pramod said that our forces remain forward deployed in the Northern Arabian Sea in a decisive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land including Karachi, at a time of choosing. He added that the Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan.
The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात विस्फोटक सामग्री से दूर रहने का परामर्श जारी किया है क्योंकि यह खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात सामग्री की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने की सलाह दी है।
In some other news, well, an earthquake of magnitude of 5.7 on the Richter scale hit Tibet today at 2:41 AM Indian time. The tremors were felt across the region. However, there are no reports of damage or injuries as of now. According to India's National Center for Seismology, the epicenter was located at a depth of 10 kilometers. The region has witnessed multiple tremors in the past few weeks.
Aaj Buddh Purnima hai.
Buddham saranam gacha.
गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
एंड वेल प्रियंका, इन बिहार अ स्पेशल इवेंट इज बीइंग हेल्ड एट द महाबोधि टेंपल प्रेमिसेस इन बोधगया, द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज साइट। Our correspondent reports that devotees from India and abroad have arrived here on the occasion of Buddha Purnima to offer prayers.
On the occasion of Buddha Jayanti, devotees from several countries including Thailand, Vietnam and Myanmar have reached Bodh Gaya, the land of enlightenment of Lord Buddha, to offer prayers. A special prayer being organized at Mahabodhi Temple. A special Dham Yatra led by Buddhist monks has started from the 80-foot statue of Lord Buddha, which is passing through various parts of Bodh Gaya. It will culminate at the Mahabodhi Temple. On this occasion, special prayers are being offered under the holy Mahabodhi tree. A large number of devotees are attending the special prayers. The entire atmosphere is resonating with the chanting of Buddham Sharanam Gacchami. With the report of Dharmendra Kumar Rai, this is Deepmala Kaushik, Akashwani News.
Buddham Saranam
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया और श्रीलंका के बौद्धों और हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है।
Yes, and you talked about Sri Lanka, Priyanka. So Sri Lanka is today observing Vesak Poya, the most sacred day in Buddhist calendar, while observing the state Vesak festival in Nuwara Eliya. And let's go to our correspondent who has more details.
Thousands of devotees have gathered in the hill town of Nuwara Eliya in Sri Lanka to join in the Vesak festival celebrations today. Temples, streets and homes have been adorned with colourful lanterns and pandals depicting scenes from Buddha's life. Sri Lanka's President Anura Kumaradesanayake had inaugurated the week-long festival on Saturday, marking the Buddhist year 2569. The government has declared the period from May 10th to 16th as the state Vesak week. Further, over 8,500 temporary stalls or dansals have been registered across the island, offering free meals and refreshments to the devotees. Ahmed Moin Farooqi, Akashwani News, Nuwara Eliya.
And now moving on to the world of sports, at the Archery World Cup Stage 2, India finished its campaign with 7 medals, including 2 gold, 1 silver and 4 bronze in Shanghai, China yesterday. We have a report from Sports Desk.
India's medal tally at the Shanghai Archery World Cup saw a major boost after Parth Sushant Salunke clinched bronze medal in men's individual recurve, while Deepika Kumari also won bronze in women's individual recurve event. In the playoffs, Parth Salunkhe defeated France Olympic medalist Baptiste Addis 6-4 and Deepika Kumari outclassed Republic of Korea's Kang Chae-yong 7-3. In women's cricket, India clinched the Tri-Nation ODI series beating Sri Lanka by 97 runs in the final match at the R. Premadasa Stadium in Colombo yesterday. Vice-captain Smriti Mandhana's majestic 116 made her player of the match, while Sneh Rana got the player of the series award for her sparkling performance with the ball, who scalped 15 wickets in 5 matches. With the Women's ODI World Cup just 5 months away, the series win adds morale to the team, giving several positives. Moving ahead, the Hockey India will announce the Indian women's team for the Europe leg of the FIH Pro League 2024-25 today. The league will bring a test of strength, a battle of spirit and a display of unity. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
And now we have come to our Metro News section. We'll bring news from different cities. Let's start with Chennai. Edge Up, a software powered by an AI model that intends to shake up the ecosystem for competitive exam preparation, has been introduced by Zaria Angels, which is an edu startup. Siddiqui, a founder of the startup, said that it was created after traveling across the country. The software platform enables highly personalized learning using student assessments and data analytics. Unlike many startups that rely on publicly available AI models, this startup has developed a proprietary small language model trained on extensive curated data sets, including study material, lesson plans, and question sets in both video and text formats. Very interesting, Priyanka, because I believe that AI ka hi daur chal raha hai. Everywhere you see that, you know, how artificial intelligence is probably, you know, creating waves everywhere. Another news coming in from Chennai, Tamil Nadu has begun rolling out differential global positioning system based land surveying method, replacing the age-old chain and tape systems. This cutting-edge technology allows landowners to receive accurate digital maps with coordinates down to a few centimeters, offering a major leap in transparency and convenience. The state is the first in the country to establish 70 continuously operating reference stations and permanent GPS stations that ensure sub-centimeter accuracy in positioning.
और अब दिल्ली की खबरों पर नजर डालें तो दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 8वीं विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा भाग है। इस सत्र में सरकार दिल्ली स्कूली शिक्षा शुल्क निर्धारण तथा विनियमन पारदर्शिता विधेयक सदन में पेश कर सकती है। इस खबर के बारे में सभी दिल्लीवासियों को जानना चाहिए कि दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे निगम के किसी भी प्रकार के शुल्क जमा करने से पहले निगम की वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि कर लें। पता है सारा ऐसा सामने आया कि कुछ व्यक्ति निगम के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का दुरुपयोग कर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और उन्हें फर्जी रसीद दे रहे हैं। तो निगम ने लोगों को दलालों और ठगों के झांसे में न आने की सलाह दी है। एक अन्य खबर पर नजर डालें कि दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानें सामान्य बनी हुई है। हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि मौजूदा हवाई परिस्थितियों और बढ़े सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरने में अधिक समय लग सकता है। और ये भी सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही हवाई अड्डे आए और अपुष्ट खबरों से बचें।
Moving on to Bengaluru, Union Minister for Steel and Heavy Industries, H.D. Kumaraswamy, has thanked the Government of India for the safe return of 13 Karnataka students studying at Sher-e Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology in Srinagar. The students travelled from Srinagar to Jammu by bus and then onwards to Delhi by train, with close monitoring by Union Minister H.D. Kumaraswamy. The officials from the Ministry of Steel and Heavy Industries received the students at Delhi Railway Station. H.D. Kumaraswamy praised Prime Minister Modi for his inspiring and reassuring leadership. The minister informed that the Prime Minister's clear instructions and deep personal commitment towards public welfare enabled swift coordination between departments to evacuate the students from danger zones near the Pakistan border.
और अब जानते हैं मुंबई की खबरें। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के सभी आरटीओ सीमा जांच चौकियों को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। ऐसा जीएसटी ढांचे और केंद्र सरकार के परिवहन आधुनिकीकरण लक्ष्यों के अनुरूप किया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि अंतर राज्य परिवहन को मजबूती तथा वाणिज्य वाहनों को हो रही कठिनाइयों से दूर रखा जाए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी के सफल कार्यान्वयन तथा उन्नत डिजिटल प्रणालियों को देखते हुए जांच चौकियों की दशकों पुरानी जरूरत को समाप्त किया गया, क्योंकि ये पता है ऐसा 1966 में स्थापित की गई थी ये सीमा चौकियां, और मुख्य रूप से जो वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना था इसका काम, परिवहन जो कानून है उसको लागू करना और सड़क करों को जो है इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। तो अब बहुत राहत मिलने वाली है लोगों को इससे। महाराष्ट्र में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से 11वीं कक्षा या जूनियर कॉलेज के पहले वर्ष के लिए दाखिला ऑनलाइन सीएपी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को किसी तरह की धोखाधड़ी या परेशानी से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट mahafyjcaadmissions.in और हेल्पलाइन नंबर 8530955564 जारी किया है।
And moving on to Hyderabad, the students and other citizens of Telangana living in border states are reaching Telangana Bhavan in New Delhi in large numbers in view of the prevailing situation in those states. Officials at Telangana Bhavan made arrangements to enable these people to reach their respective destinations. Telangana's resident commissioner Gaurav Uppal informed that another 100 people are expected to reach Telangana Bhavan. Officials were making all arrangements for them. The resident commissioner personally supervised the arrangements for their stay and transport. Earlier, the state government announced that it had set up a control room at Telangana Bhavan in New Delhi to provide total assistance to all citizens belonging to the state. Several students from universities in Jammu, Punjab and other northern states reached Telangana Bhavan and were given all the help to stay and finally travel to Hyderabad safely.
कोलकाता में जानते हैं क्या खबर रही। कोलकाता में रविंद्र सरोवर जो एक झील है वहां पे कल से वहां अखिल भारतीय अंतर आमंत्रण स्कूल नौकायन प्रतियोगिता शुरू हुई। 44 स्कूलों के कुल 400 प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं। ये 17 मई तक चलेगी। प्रतिभागी इंडोर नौकायन, कॉक्स्ड फोर्ड और डबल स्कल डिवीजनों में लड़के तथा लड़कियों की जूनियर और सीनियर कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। और अब मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में भी कल काफी आंधी चल रही थी शाम में, तो आज भी ऐसी संभावना है कि आंधी चल सकती है और बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बारिश की ये संभावना है, न्यूनतम तापमान 26, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान रह सकता है 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
तो दिल्ली में तो प्रियंका थोड़ी राहत गर्मी से मिल जाती है, लेकिन फॉर मैंगो लवर्स ही बड़ी दुखद खबर होती है, क्योंकि आम के जो फल होते हैं वो पहले ही गिर जाते हैं। सो वेल, लेट्स होप कि भाई ठीक है, आज इतनी भी बारिश ना हो जाए कि हम लोग आम से महरूम हो जाए।
हालांकि दिल्ली में इतना नहीं है पर
And well, if we talk about other states, Chennai is going to have a partly cloudy sky today with possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 29, while maximum will be around 38 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with possibility of a thunder lightning today. Temperature in Bengaluru will hover between 22 and 33 degrees Celsius. Well, Hyderabad will have a cloudy sky as well, and one or two spells of rain are also expected today. The temperature will hover between 23 and 38 degrees Celsius.
और अब जानते हैं कि इतिहास में आज क्या महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। आज 12 मई है। राठौर वंश के शासक रहे राव जोध सिंह ने 12 मई 1459 में गौरवशाली इतिहास समेटे राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की स्थापना की थी। इससे पहले जोधपुर का नाम मारवाड़ था और राव जोधा ने पहले अपनी राजधानी मंडोर बनाया था, बाद में उन्होंने राजधानी जोधपुर स्थानांतरित कर दी थी। जोधपुर आकर्षक महलों, दुर्गों और कई मंदिरों को समेटे और ये आज के समय में मशहूर पर्यटन स्थल है और इसे जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं।
That's right, and if we move, in later years, in the year 1638, Emperor Shah Jahan commissioned the construction of the Red Fort at Shahjahanabad, जैसे उसको कहा जाता था, आज हम लोग पुरानी दिल्ली कहते हैं, but yes, this is how it started, and also in 1902, 140,000 miners went on strike in Pennsylvania, they went on strike for higher wages, shorter work days, and recognition of the union.
1965 में आज ही तत्कालीन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान लूना 5 चांद पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस यान को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के पहले स्पेसक्राफ्ट के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसे वहां ले जाने वाला रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे यह चांद की सतह पर क्रैश हो गया। इसे 9 मई को भेजा गया था, पर उसके अगले ही साल जो सोवियत संघ है उसने उपलब्धि हासिल की और चांद की सतह पर उतरने वाला पहला देश बन गया। उसके बाद अमरीका, चीन और भारत ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि भारत ने इसमें 4 चांद और लगा दिए हैं क्योंकि हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है।
Yes, and if we go to the year 1926, the first confirmed trip to the North Pole was carried out by a semi-rigid Italian-built airship. Also in 1967, the first ever quadraphonic concert was held when Pink Floyd performed the Gains for May concert in London. And in 1992, Ms. Santosh Yadav from ITBP, that is Indo-Tibetan Border Police, became the second Indian woman to set foot atop Mount Everest.
और आज ही के दिन 1915 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापानी नौका सानुकी मारू के जरिए उन्होंने भारत छोड़ दिया था, जिसके बाद वे जापान पहुंचे। दरअसल 1915 में जब ब्रिटिश सरकार ने रास बिहारी बोस को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वे जापान चले गए और जापान में जाकर आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने का उनका एक महत्वपूर्ण कदम रहा।
And today is International Nurses Day, which is observed every year on May 12th to commemorate the birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of modern nursing. Known as the Lady with the Lamp, she revolutionized healthcare during the Crimean War, and laid the foundation for nursing as a professional discipline. Her legacy continues to inspire generations of nurses, making May 12th a symbolic day to reflect on the profession's evolution and impact. And the theme for International Nurses Day 2025 is Nurses, a voice to lead, delivering quality, securing equity. This theme highlights the critical role of nurses, not only in providing quality care, but also in ensuring healthcare access and equity for all communities. ICN President Pamela Cipriano said in her message that every day nurses deliver the care that saves lives, gets patients through their most vulnerable moments, and transform health systems.
Hello, everyone. I'm Dr. Pamela Cipriano, President of the International Council of Nurses, and I'm honored to send greetings on behalf of ICN to all the nurses around the world on this International Nurses Day 2025. Nurses are on the front lines, courageously caring for people during conflicts, natural disasters, and health emergencies, providing preventive care and managing chronic conditions to improve quality of life. You're innovating to transform health systems and advocating for accessible health care for your communities and for all people in the world. Every day, you demonstrate that nurses are the key to healthier populations and thriving economies and societies. While today is a moment of celebration, it's also an opportunity for us to come together in solidarity as a profession, raise our voices, and advocate for nursing and for health.
1820 को जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपनी सेवा भावना के लिए याद की जाती हैं। क्राइमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल सैनिकों की प्राण प्रण से सेवा करने के कारण ही उन्हें द लेडी विद द लैम्प कहा गया। और एक इतिहास की घटना एक और है महत्वपूर्ण, जिसे मतलब उसको बताना जरूरी है कि पहला स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर दुनिया के सामने आज ही की तारीख थी जब आया था 1991 में, और जर्मनी के सिविल इंजीनियर कॉनराड ज्यूस ने पहला प्रोग्रामेबल पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर दुनिया के सामने पेश किया था। इसका नाम था Z3।
And now when we remember some of the personalities who either have the birth or death anniversaries today, तो इस फेरिस में सबसे पहला नाम आपके पास किसका है?
जी हाँ, जिनका नाम है उनकी हम पंक्तियों से ही शुरुआत करते हैं कि हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है इसको दोबारा कहें। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह यानी प्रगतिवाद के पहले पंक्ति के कवि, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के भी विद्वान थे। उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता शिल्प संरचना है, यानी जो शब्दों के माध्यम से चित्र रचना करती हैं। इसका कारण चित्रकला के प्रति उनका लगाव था और उनकी मुख्य कृतियों में कुछ कविताएं चुका भी हूं मैं नहीं, इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी शामिल है और उन्हें 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सहजता अगर इंसान का गुण है तो शमशेर बहादुर सिंह जीवन इसका एक उदाहरण है। न औपचारिकता न पाखंड, जैसा जीवन वैसा लेखन। जैसे कोई तो साथ साथ मेरी बेखुदी में था, मैं कैसे अपने होश में आया जवाब दो, उम्मीदें वसल हो कि बहाना हयात का, तुम मेरे दिल में हो मेरे दिल का जवाब दो।
क्या बात है प्रियंका, वेरी नाइस लाइंस। एंड वी आर रिमेम्बरिंग कैथरीन हेपबर्न टुडे ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, एन अमेरिकन एक्ट्रेस ऑफ यस्टरडेज हुज करियर एज अ हॉलीवुड लीडिंग लेडी स्पैंड 6 decades. She was known for her headstrong, independent, spirited personality and outspokenness, cultivating a screen persona that matched this public image and regularly playing the strong-willed, sophisticated women. She worked in a varied range of genres, from screwball comedy to literary drama, which earned her various accolades, including 4 Academy Awards.
Now, I have some instructions for you. I want you to go straight back to the gallery. Start your motor. When you get to the gallery, tell Jennifer that she will be looking after things temporarily. She's to give me a ring if there's anything she can't deal with herself. Then go into the office and make out a check for cash for the sum of $5,000. Then carefully, but carefully, Hillary, remove absolutely everything that might subsequently remind me that you had ever been there, including that yellow thing with the blue bulbs which you have such an affection for. Then take the check for $5,000, which I feel you deserve, and get permanently lost. It's not that I don't want to know you, Hillary, although I don't. It's just that I'm afraid we're not really the sort of people that you can afford to be associated with. Don't speak, Hillary. Just go.
Well, a very powerful dialogue is, and so characteristic of Katharine Hepburn's personality in real life as well. And we're remembering Vitthal Rao K on his birthday today. And he's a Tamil writer. He was born at Hosur. And although a Kannadiga by birth, Tamil was his medium of instruction since he did his schooling in Tamil Nadu. He's a man of varied talents. He took to writing in his early 20s, but he became a recognizable face in the local literary circles when his short stories started appearing in popular Tamil magazines. And in his literary career, he has penned 9 novels, 5 collections of 140 short stories and 7 essays, ranging from world cinema to fine art, history and literature.
जाने माने निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की आज जयंती है। उन्होंने राम राज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स और प्रकाश स्टूडियो की स्थापना की और फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य भी थे। विजय भट्ट ने राम राज्य, भरत मिलाप जैसी हमने आपको बताया फिल्में बनाई थी और निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी ड्रीमलैंड जो 1936 में आई थी और हॉलीवुड फिल्म इनविजिबल मैन से प्रेरित थी। उनकी फिल्म राम राज्य काफी हिट हुई थी और स्वयं महात्मा गांधी ने भी इसे देखा था। बापू ने इसके सिर्फ 40 मिनट तक के अंश देखने थे, लेकिन वे इसको देखते हुए इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 90 मिनट तक ये फिल्म देखी। और विजय भट्ट को श्रेय जाता है कि हिंदी फिल्मों में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की। उनकी फिल्मों में महान शास्त्रीय कलाकारों ने कई बार एक साथ अपनी गायकी या वादन का फन बिखेरा, जैसे बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खां और पंडित डीवी पलुस्कर ने आज गावत मन मोरो गीत गाया था। फिल्म गूंज उठी शहनाई में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां की जुगलबंदी देखने को मिली थी। तो हम आपको बैजू बावरा का यही बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं जो आज भी कर्णप्रिय है।
आज गावत मन में रो झूम गे। And, well, very few people know that he actually was an electrician when he started out, but he always wrote scripts and he worked with the Bombay Electric Supply and Tramways Company. But he had already written a few scripts for Gujarati theatre, and a meeting with Ardashir Irani was the turning point in his career. Irani, who later produced Alamara, which was India's first talkie, also managed the Royal Company studio and introduced Vijay Bhatt to its owner, Abu Hussain, and the rest is history.
Ji, aur unki ek aur film Himalay ki Goat ka jaate jaate khubsurat geet sunte chalte hain.
Chand si mehbooba ho meri kab aisa maine socha tha. Haan tum bilkul.
कह रहे हैं आपसे अनुमति ली जाए तो प्रियंका अरोड़ा और सायरा मुश्तफा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की. नमस्कार, नमस्कार।